नमस्कार, आज हम सीधे एक बहुत ही गहरे सवाल में उतर रहे हैं।
हाँ।
मैं क्या हूं? हमारे पास श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब है, मैं क्या हूं, आत्मज्ञान की साधना, उससे कुछ विचार है
जी।
अब देखिए, दुनिया भर में इतने सारे ज्ञान हैं, पर खुद को जानना मतलब आत्मज्ञान, इसे सबसे अहम क्यों माना गया है? इन स्रोतों का लक्ष्य सिर्फ शब्दों से समझाना नहीं है, बल्कि साधना से, अनुभव से इस सवाल का जवाब दिल में उतारना है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें कहां ले जाते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, और स्रोत इस बात पर काफी मतलब जोर देते हैं कि अगर हमें अपने असली स्वरूप का पता नहीं है ना,
हाँ,
तो जीवन एक तरह से अनिश्चित सा हो जाता है, दिशाहीन। आत्मज्ञान ही वो पक्का रास्ता है जो सच्ची सुख शांति तक ले जाता है।
अच्छा,
यहाँ चाणक्य नीति का भी जिक्र है, एक श्लोक है, कश्चाहम काचमे शक्तिरिति चिंत्यम मुह मुहा।
हाँ, सुना है।
इसका मतलब है कि मैं कौन हूं और मेरी असली शक्ति क्या है, मतलब मेरी क्षमता क्या है, इस पर लगातार बार बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।
और यही बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर अगर किसी से पूछें आप कौन हैं,
हाँ,
तो जवाब क्या आता है? अपना नाम, अपना काम, परिवार, पद, मतलब सारी पहचान शरीर या बाहरी चीजों से जुड़ी हुई है।
हाँ बिल्कुल, और स्रोत कहते हैं कि यही यही तो सबसे बड़ा भ्रम है।
अच्छा,
शरीर तो बस एक औजार है, या समझ लीजिए एक वस्त्र है जो हमने पहना हुआ है। असली मैं वो तो आत्मा है, तो मैं क्या हूं का सीधा गहरा जवाब है, मैं आत्मा हूं।
लेकिन ये जानना कि मैं आत्मा हूं और इसे वाकई जीना, इसमें तो बहुत फर्क है ना?
बहुत बड़ा फर्क है।
हम थ्योरी में तो मान लेते हैं, हाँ, आत्मा अलग शरीर अलग, पर असल जिंदगी में,
हाँ,
रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम शरीर के सुख दुख को ही अपना मानकर चलते हैं। शरीर को चोट लगी तो मुझे चोट लगी, किसी ने तारीफ की तो मेरा मान बढ़ गया। ये शरीर भाव इतना मजबूत क्यों होता है?
ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, और इसका कारण स्रोत बताते हैं कि हमारी जो इंद्रियां है ना,
हाँ,
वो लगातार बाहरी दुनिया से जुड़ी रहती हैं, तो ध्यान शरीर और उसकी जरूरतों पर ही टिका रहता है।
अच्छा,
और यहीं से फिर दो तरह के स्वार्थ टकराते हैं। एक है शरीर का स्वार्थ, जैसे इंद्रियों का सुख, मन की इच्छाएं, जैसे पैसा कमाना है, नाम कमाना है, अधिकार चाहिए, और दूसरी तरफ है आत्मा का स्वार्थ। वो क्या है? वो गहरी शांति, वो संतुष्टि जो अच्छे कामों से, सेवा से, त्याग से, दूसरों की भलाई से मिलती है।
और ये दोनों अक्सर उल्टी दिशा में जाते हैं।
हाँ, अक्सर,
बिल्कुल,
ये एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं।
अच्छा,
तो फिर जो इंसान सिर्फ शरीर भाव में जी रहा है, वो एक तरह से बस टेम्पररी सुख और बाहरी चीजों के पीछे ही भागता रहता है। हाँ बिल्कुल, क्षणिक सुख। स्रोत इसे पशु जैसा जीवन भी कहते हैं, जिसमें बस खाना पीना सोना इंद्रिय भोग, बस यही सब मायने रखता है।
और ये रास्ता कहाँ ले जाता है?
ये अंततः अशांति और दुख की ओर ले जा सकता है, पाप कर्मों की ओर भी।
ओह,
इसके बिल्कुल उलट, जब कोई आत्मभाव में जागता है, मतलब ये समझने लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ,
हाँ,
तो उसका रुझान पुण्य की ओर, अच्छाई की ओर, जिसे स्रोत देवत्व करते हैं, उसकी तरफ होता है।
तो उसे क्या मिलता है?
उसे अंदर से शांति मिलती है, संतोष मिलता है, एक अलग ही तरह का आनंद महसूस होता है। फिर जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, कभी फायदा, कभी नुकसान, कभी मान, कभी अपमान, वो उसे उतना परेशान नहीं करते।
क्यों?
क्योंकि वो जानता है कि ये सब तो बाहरी दुनिया के बदलते हुए रंग हैं, ये शरीर के साथ जुड़े हैं, असली मैं यानी आत्मा इन सबसे परे है, इनसे प्रभावित नहीं होती।
स्रोत में इसके बड़े अच्छे उदाहरण भी दिए हैं ना, वो बंदर वाला।
हाँ हाँ, वो बंदर और अनाज के बर्तन वाला।
हाँ, कि बंदर बर्तन में हाथ डालता है, अनाज मुट्ठी में भर लेता है, पर फिर मुट्ठी बंद होने से हाथ बाहर नहीं निकाल पाता।
बिल्कुल,
जब तक उसे ये समझ नहीं आता कि फसाया तो उसने खुद को ही है मुट्ठी बांधकर, तब तक वो वही फंसा रहता है।
एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी ही बनाई हुई धारणाओं में, अपनी इच्छाओं में बन जाते हैं। शरीर भाव भी कुछ ऐसा ही है।
और वो दूसरा उदाहरण, शेर के बच्चे वाला।
हाँ, वो भी बहुत जबरदस्त है कि शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलता है तो खुद को भेड़ी समझने लगता है, मिमियाता है, उन्हीं की तरह डरता है।
हाँ,
लेकिन एक दिन जब पानी में अपना अक्स देखता है
तो उसे अपनी असलियत दिख जाती है।
बिल्कुल, उसे अपना सिंह रूप दिखता है, और बस उसी पल उसका सारा भेड़पना गायब, वो समझ जाता है कि मैं कौन हूँ।
तो आत्मज्ञान भी कुछ ऐसा ही है, एक तरह से आईना दिखाता है।
हाँ बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि हम ये कमजोर नश्वर शरीर मात्र नहीं हैं, हम कुछ और हैं, कहीं ज्यादा शक्तिशाली। स्त्रोत तो यहाँ तक कहते हैं जीव असल में ईश्वर ही है,
मतलब हमारे अंदर अपार शक्ति है।
अपार शक्ति और संभावनाओं का केंद्र है, हम बस पहचानना है।
तो फिर ये आत्मज्ञान सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात या मरने के बाद की बात नहीं हुई?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारी सफलता असफलता पे भी पड़ता है।
निश्चित रूप से, बल्कि स्त्रोतों तो इसे व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने की सर्वश्रेष्ठ कला कहते हैं।
अच्छा, वो कैसे?
आप सोचिए, जब किसी को ये एहसास हो जाए कि वो सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का स्रोत है, आत्मा है,
हाँ,
तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसका चुनौतियों को देखने का नजरिया कैसे बदल जाएगा। आत्मबल जिसे कहते हैं ना,
हाँ, आत्मबल,
सारी सफलताएं उसी से जुड़ी हैं। अध्यात्म शास्त्र का जो मूल संदेश है वो यही है, हम छोटे तुच्छ नहीं हैं, हम महान हैं, अनंत शक्ति के स्वामी हैं। बस जरूरत किस बात की है? अपने असली स्वरूप को, अपनी शक्तियों को पहचानने की, यही कुंजी है। इसी को शायद गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, कर्म में कुशलता।
तो सार ये निकलता है कि मैं ये शरीर हूँ, इस सीमित सोच से ऊपर उठना,
हाँ,
और मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शक्तिशाली हूँ, इस बोध में, इस भाव में जीना,
बिल्कुल,
यही वास्तविक सुख शांति और जीवन के सही लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है।
बिल्कुल सही। और ये बात हमें एक बहुत ही विचार करने लायक बिंदु पर छोड़ जाती है।
क्या?
जरा सोचें कि अगर कोई व्यक्ति सचमुच सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा महसूस करने लगे, जीवन की मुश्किलों का सामना किस तरह करेगा और उसके जीवन के लक्ष्य क्या होंगे, इस पर सोचना मुझे लगता है खुद भी आत्मज्ञान की यात्रा का एक हिस्सा है।